माधव कुंज बिहारी
गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन गज जन रंजन यमुना के रमण चारी यशोदानंदन गज जन रंजन यमुना के रमण चारी यशोदानंदन गज जन रंजन यमुना के रमण चारी यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री राधा माधव की, श्री राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौर निताय की, श्री गोपाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतपुराण स्कंद चार अध्याय 22 श्लोक संख्या 8। तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्या विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शुभो विष्णुस्तत्तामुदः इन्द्रस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुस्तथानुगः किं तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुस्तथानुगः तस्य दुर्लभतरम् इह लोके परत्र च यस्य विप्रः प्रसीदन्ति
शब्दकार परम पूज्य श्री सुमदेव की भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा किम क्या
तस्य उसका दुर्लभतरम
अत्यंत कठिनाई से प्राप्त
यह इस लोके संसार में परत्र मृत्यु के पश्चात च अथवा यस्य जिसका विप्राह ब्राह्मण या वैष्णव प्रसीदन्ति प्रसन्न हो जाते हैं शिवः सर्व कल्याणमय विष्णु हो भगवान विष्णु च भी स्व अनुगह साथ साथ चलने वाले
अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा
जिस पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न हो जाते हैं वो व्यक्ति इस संसार में तथा मृत्यु के बाद भी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त कर सकता है। यही नहीं ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के साथ साथ रहने वाले उस व्यक्ति को कल्याणकारी शिव तथा भगवान विष्णु का भी अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा ब्राह्मण तथा वैष्णव तो परम कल्याणमय भगवान विष्णु को धारण करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:38 इसकी पुष्टि हुई है।
प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमारि पुरुषम तमहं भजामि।
भक्तगण श्री भगवान गोविंद के अत्यंत प्रेमवश उन्हें अपने हृदयों में धारण करते हैं। भगवान तो पहले से सबों के हृदय में विद्यमान है किंतु वैष्णव तथा ब्राह्मण प्रेम विभोर होने पर सदैव उनका दर्शन करते हैं। फलतः ब्राह्मण तथा वैष्णव विष्णु को धारण करने वाले हैं। वे जहाँ भी जाते हैं भगवान विष्णु शिवजी अथवा भगवान के भक्त भी उनके साथ साथ लग जाते हैं। चारों कुमार ब्राह्मण थे और वे महाराज विष्णु के स्थान पर गए थे। अतः स्वाभाविक था कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्त भी वहां उपस्थित थे। ऐसे स्थिति में यह निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मण तथा वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ठाकुर द्वारा की गई गुरु स्तुति से होती है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। यदि गुरु हो तो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होता है। बस यदि गुरु को जो ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही होते हैं प्रसन्न कर लिया जाए तो उसकी भगवान भी प्रसन्न होते हैं।
और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो संसार में या मृत्यु के बाद मनुष्य को और क्या प्राप्त करने को रह जाते हैं। सारे वैष्णवों को और वैष्णवियों को प्रणाम, मेरा बंधु प्रणाम। इस श्लोक पर मैं कुछ बोल सकूं। जब परमात्मा प्रभु यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इंग्लिश वाले में क्लास देंगे कि हिंदी वाले में क्लास देंगे, तो मैंने यही पूछा कि श्लोक क्या है दोनों में, कौन सा श्लोक है। तो जब मैंने दोनों श्लोक देखा तो मैंने ये चुना श्लोक, क्यों? क्योंकि इसका जो विषय वस्तु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो भागवत पुराण में सभी कुछ महत्वपूर्ण है, तो कुछ विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो ये जो विषय है ये इसका जो सार है वो मैं अभी बोल देता हूँ, क्योंकि लास्ट में बोलूंगा तो आप उससे थक जाएंगे, तो ठीक तरह से अमल नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो जो सार है इस श्लोक का वो ये है कि ब्राह्मण और वैष्णव ये दोनों जो है ये भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो कहीं पर भी ब्राह्मण या वैष्णव, किसी भी प्रकार का वैष्णव, किसी भी डिग्री का वैष्णव, नया वैष्णव, पुराना वैष्णव, बीच वाला वैष्णव, कोई भी हो, तो हमें आदत डालना चाहिए, बार बार हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि वैष्णवों का धूलि जो है वो हमारे सर पर रही है। तो वैष्णव कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग शरीर भी हो सकता है वैष्णवों का। जैसे गरुड़ जी का शरीर अलग है, हनुमान जी का शरीर अलग है, तो अलग अलग जो जटायु वो भी वैष्णव है लेकिन दूसरे शरीर में है। तो वैष्णव शरीर से अलग हो सकते हैं, मन से अलग हो सकते हैं, ऐसे भी, लेकिन एक चीज कॉमन है उनके अंदर, वो क्या है कि वो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये श्लोक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अपने आप को भी याद दिलाऊंगा, हमें याद दिलाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वभाव होता है जो बद्ध जीव का वो यही होता है, गलती ढूंढना है, दूसरे में गलती ढूंढना है और खुद को डिफेंड करना है, ये जो बद्ध जीव का स्वभाव होता है। तो इस स्वभाव को रोकने के लिए हर दिन हमें सुबह हम लोग जब वांछा कल्प करु व्यस्त कृपा सिंधु देव सीताराम पावन देव वैष्णव नमो नमः, जब हम लोग ऐसा बोलते हैं तो मैकेनिकली नहीं बोलना चाहिए, उस समय हमें हमारे चेतना में हम लोग ये सोचना चाहिए कि जितने भी वैष्णव है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड में और भगवान के धाम में अनंत कोटि वैष्णव, उन सबको जो है मैं प्रणाम कर रहा हूँ। उस वैष्णव को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिससे मेरा कल झगड़ा हुआ था। हो सकता है कभी कभी जब वैष्णव के साथ रहते हैं तो कभी कभी कुछ अनबन हो सकता है, चाहे वो हमारी गलती हो या किसी और की भी गलती हो। कभी कभी हमारे इंद्र तृप्ति पर अगर कोई रोक टोक करे कोई वैष्णव भी, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैष्णव के समाज में भी हम लोग रहते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इस्कॉन, सारे वैष्णव जितने भी बाहर भी वैष्णव है, तो सबके लिए हमें याद दिलाना चाहिए अपने आप को कि सबको हम लोग दंड प्रणाम कर रहे हैं, सब हमारे मास्टर है, सब हमारे प्रभु है, भले भी कैसे भी क्यों, एक ही कारण है क्योंकि भगवान को वो बहुत प्रिय है। वही अगर भगवान को प्रिय है तो वो हमें कैसे प्रिय हो सकते, अगर भगवान उनको आदर कर रहे हैं, भगवान उनका आदर कर रहे हैं, ब्राह्मण और वैष्णव का भगवान जो है वो आदर कर रहे हैं, तो हम क्या भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, भगवान से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हम लोग, छोटे छोटे जीव हम लोग, तो इसलिए ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा ये श्लोक मुझे याद दिलाने के लिए अच्छा है। तो ये जो सेक्शन चल रहा है इसमें ये दिया है महाराज पृथु, महाराज पृथु बहुत बड़े राजा हैं, सत्यवीर अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं महाराज पृथु, और महाराज पृथु पूरे विश्व के राजा हैं, पूरे विश्व के राजा हैं। तो वो कैसे चार कुमारों को वो कैसे रिसीव कर रहे हैं, कैसे रिसेप्शन दे रहे हैं, कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, तो ये बताया जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मण और वैष्णवों को हम लोग स्वागत करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हम किसी के घर पर जाते हैं, तो आजकल ऐसा कल्चर बन गया है कि कोई पानी के लिए भी नहीं पूछते, तो बन गया है कल्चर थोड़ा सा, लोग ये भी भूल जाते हैं कि या फिर ये सोचते हुए कि अभी इतनी गर्मी नहीं है तो प्यास लगी नहीं होगी उनको, ऐसा भी सोचते होंगे। लेकिन एक कस्टम है, एक बेसिक एटिकेट है कि कोई अगर घर पर आए तो उनको पूछना चाहिए कि आपको पानी वगैरह चाहिए, ठीक तरह से उनको बिठाना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, ये भी नहीं हो रहे हैं, खास करके सबको गृहस्थों को या कोई भी आश्रम में भी कोई रहता है तो कोई आश्रम में वैष्णव आ रहे हैं तो उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, तो ये बेसिक चीजें भूल गए हैं लोग। बेसिक एटिकेट कहीं पर ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए केवल भागवत पुराण में ये पुराणों में ट्रेनिंग दिया हुआ है इन चीजों का। आजकल स्कूल में भी जो सिखाया जाता है कहाँ पर ट्रेनिंग है कि गेस्ट रिसेप्शन कैसा होना चाहिए, वहाँ पर तो नहीं है ट्रेनिंग, बिल्कुल स्कूल में भी नहीं है, बच्चों को भी मालूम नहीं है कैसे ट्रेनिंग होना है, क्योंकि बच्चों को भारत का हिस्ट्री सुनाएंगे या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री सुनाएंगे, लेकिन रामायण महाभारत भागवत पुराण ये सब होता नहीं है। धीरे धीरे बच्चे भी भूल रहे हैं। एक बार एक स्कूल का इंस्पेक्टर एक स्कूल में गया इंस्पेक्ट करने के लिए, एक वो बंदूक वाला इंस्पेक्टर नहीं, एक दूसरा इंस्पेक्टर जो स्कूल का इंस्पेक्टर चेकिंग के लिए गया। तो ये एक स्कूल में गया और एक क्लास में गया, एक क्लास में गया तो वहां पर क्लास चल रही थी, तो आप एकदम से रुक गया फिर इंस्पेक्टर जी आए और सब लोग विद्यार्थी उड़ गए सब। तो इंस्पेक्टर ने पूछा टीचर से जो पढ़ा रहे थे, उनसे पूछा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, मैंने कहा कि मैं रामायण पढ़ा रहा हूँ। रामायण जी बहुत अच्छी बात है, फिर इंस्पेक्टर ने कहा कि ठीक है देखता हूँ क्या कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। उसने एक विद्यार्थी को खड़ा कर दिया, विद्यार्थी को खड़ा करके बोले ठीक है ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। वो बच्चा जो है वो डर गया एकदम, बच्चा डर के बोला तो देखिए सर मैं वेकेशन पे था, आज ही आया हूँ मैं, थोड़ी देर मेरी छुट्टी चल रही थी, मैं आज ही आया हूँ तो मुझे मालूम नहीं है किसने छोड़ा, मुझे मालूम नहीं किसने छोड़ा है।
बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो,
क्योंकि ठीक बन बैठ जाओ। और एक विद्यार्थी को खड़ा कर दिया, उससे पूछा कि भाई तुम बताओ कि शिव जी का धनुष किसने छोड़ा। वो एकदम से चिढ़ गया लड़का और बोला कि देखिए सर, यहाँ पे तोड़फोड़ कोई और करता है और नाम मेरा आता है। हर बार ऐसे होता है, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैंने नहीं छोड़ा है शिव जी का। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब तो स्टूडेंट से पूछ नहीं सकते, तो टीचर से पूछते हैं। तो टीचर से पूछे कि भैया ये क्या कह रहे हैं लड़के। टीचर ने कहा कि सर ये स्कूल अच्छा स्कूल है, यहाँ पर बच्चे अच्छे हैं, सारे तोड़फोड़ नहीं करते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ जो कुछ लड़के कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उन्होंने नहीं तोड़ा होगा। उन्होंने नहीं छोड़ा है सर। इंस्पेक्टर जो है वो अब क्या करूँ, टीचर भी ऐसे करेंगे। चलो प्रिंसिपल से मिल लेता हूँ, मेन आदमी स्कूल का। तो प्रिंसिपल से मिलने गए वो, प्रिंसिपल से मिल के इंस्पेक्टर बोले कि देखिए मैं गया कक्षा में और मैंने ऐसे ऐसे पूछा और ऐसे ऐसे जवाब मिल रहे हैं मुझे, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। बहुत सीरियस हो गए और सीरियस होकर बोले कि देखिए स्कूल के बच्चे सब अच्छे हैं, पैसे तोड़फोड़ नहीं करते वो, लेकिन अगर तोड़फोड़ हुआ है तो हम भरपाई कर देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर कुछ तोड़फोड़ हुई है तो हम उसकी भरपाई कर देंगे आप बिल्कुल। समझ गया कि यहाँ पर कितना सिखाया जा रहा है और कितना सीख रहे हैं। तो वैदिक कल्चर एक्चुअली जो है ये भूल रहे हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव अगर घर पर आए हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है, उनका तो स्वागत बहुत अच्छे से होना चाहिए। ऑर्डिनरी पर्सन अगर आए कोई तो उसका भी स्वागत होना चाहिए, अतिथि देवो भव। ऑर्डिनरी पर्सन भी आते हैं तो अतिथि देवो भव का क्या अर्थ है कि अगर कोई बगैर बोले आ जाए अतिथि तो भी उनका स्वागत कैसे होना चाहिए, जैसे देवताओं का स्वागत होता है। लेकिन अभी कलयुग में कल्चर जो है रिवर्स हो गया है, लोग डर जाते हैं। हम इंदौर में प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर एक भक्त है वो मुझसे बोले कि पहले मेरा घर जो है वो स्टेशन के नजदीक था, अभी मैं स्टेशन से थोड़ा दूर लिया है। क्यों क्या ऐसे स्टेशन से क्या उसका मतलब कुछ संबंध। बोले हाँ पहले जितने भी रिश्तेदार आते थे उनको लगता था कि स्टेशन के नजदीक सबसे जो नजदीक घर है वो मेरा है, तो सीधे आ जाते थे। इसलिए मैंने सोचा अब मैं घर जो है वो थोड़ा तो लोग डर जाते हैं। एक बार एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छा घर था उनका, तो पति का शौक था कि वो गेस्ट रिसेप्शन जो बुलाता था लोगों को खिलाता था सबको, ऑर्डिनरी गेस्ट भी और वैष्णवों को ब्राह्मणों को सबको बुलाता था। उसकी पत्नी जो है वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, पत्नी चिढ़ जाती थी, यहाँ ये हमेशा किसी को भी बुलाते हैं और खिलाते रहते हैं, बनाना मुझे पड़ता है। अरे वो सोचते थे तो लेकिन पति लगे रहते थे, मैं गेस्ट आते रहते थे। पति ने सोचा अभी एक उपाय करना होगा, किस्मत तो दिमाग लगाना होगा। तो पति ने एक दिन क्या किया, कुछ गेस्ट आए, पति ने कहा कि कुछ एक गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो अगर आते हैं गेस्ट तो तुम उनको अच्छे से सत्कार करके खिला पिला। पति ने कहा ठीक है, अब चांस है कुछ करते हैं। तो गेस्ट आए, दो चार गेस्ट थे, वो लगाए और बैठे। बैठे तो पत्नी जो थी वो चिमटा जो होता है, चिमटा पकड़ बोलते हैं चिमटा, उसको गर्म करने लगी उनके सामने। तो आग पर तो फिर उनको अच्छे से बिताए वगैरह गेस्ट लोगों को गर्म करने लगे। तो गेस्ट को पूछे कि आप, थोड़ा अजीब बात है, कोई पकड़ गर्म कर रहे हैं, पकड़ का जो चिमटा जो जहाँ पकड़ते हैं उसी को जो टिप होता है उसको उसी को गर्म कर दें। उन्होंने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं, मैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे जो पति है वो थोड़े से विचित्र है, राइट, वो सबको खिलाते हैं गेस्ट लोगों को, राइट, उनका बहुत अच्छा स्वभाव है, लेकिन खिलाने के बाद वो क्या करते हैं कि गरम गरम चिमटे से वो नाक पकड़ लेते हैं, वो नाक पकड़ लेते हैं गेस्ट। बाप रे बाप, ऐसा करते हैं क्या? कहता हाँ, वो सबके साथ होता है, आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक सारे गेस्ट के साथ ऐसा जो है वो करते हैं। गड़बड़ वाली बात है, यहाँ पे गरम गरम चिंता से नाक पकड़े हैं, चलो भागो यहाँ से। तो वो निकल कर जो है वो जाने लग गए। तभी वहां पर पति देव आ गए, पति ने सोचा चले गए बहुत बढ़िया है। तो वहां पर पतिदेव आ गए, पतिदेव ने कहा कि लोग क्यों जा रहे हैं? तो पति ने कहा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, अभी आगे मेरे पतिदेव को कहा कि ठीक है और दिमाग लगा। पत्नी ने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो उनको बोल रही थी कि आप लोग जो भोजन लीजिए, प्रसाद लीजिए, लेकिन वो कह रहे थे कि ये चिंता चाहिए उनको, ये चिंता उनको चाहिए। पतिदेव कहता मूर्ख औरत, एक चिंता नहीं दे सकते उनको, क्या प्रॉब्लम है, लाओ मैं देता हूँ चिंता। तो वो चिंता लेकर जो है वो उनको बुलाने लग गया, रुक जाओ, चिंता दिखा दिखा कर उनको रोक रहा था। वो जितना रोक रहा था उतना ही भाग रहे थे। तो यहाँ पर पत्नी का प्लान जो है वो थोड़ा सा सक्सेस हो गया था। तो लोग इस तरह से जो है दिमाग लगाते हैं, कोई गेस्ट आकर के उनको पूछते हैं कि आपका ट्रेन कब का है, कौन सी ट्रेन से आप जा रहे हैं, समय क्या है जाने का, आते ही पूछ जाते हैं, पूछते हैं कौन सी डेट का टिकट है आपका, ताकि पहले से ही इंडिकेशन मिल जाए कि ज्यादा देर आप रुकिए मत। तो ऐसे ये अच्छी अच्छी बात नहीं है, यही हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो कोई गेस्ट हो या कोई वैष्णव हो या ब्राह्मण हो, उनको हम लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं, उसके ऊपर वो किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर करता है। कोई गेस्ट रिसेप्शन कैसे करता है, कोई वैष्णव का कैसे स्वागत करता है, उससे पता चलेगा कि वो कितने एडवांस हैं, कितने अच्छे वैष्णव हैं या नहीं है, उससे पता चलेगा। तो आज भी इंडिया में भी अलग अलग जगह पर ये अलग अलग भावनाएं देखी जाती हैं। जैसे बॉम्बे में हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे एक बार, बॉम्बे में, तो बॉम्बे में जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कभी कोई किसी किसी घर पर सीधा
राइट दरवाजा जोर से लगा देते, वैष्णव देख के राइट ड्रेस देखते थे तो कुछ डर जाते हैं, डर जाते हैं ये साधु मेरे घर पर जुआ है क्या करने आए हैं। तो ऐसा ऐसा विचार भी लोग बम्बई में हम लोग कई जगह पर ऐसा मिला, बुक डिस्क्रिप्शन करते करते कई जगह पर स्वागत भी हुआ, लेकिन अधिकतर हमने देखा कि लोग डाउट करते हैं। और क्यों डाउट करते हैं? क्योंकि अभी जब भी कुछ घटनाएं होती है किसी वैष्णव के साथ या ब्राह्मण के साथ तब उसको हाईलाइट किया जाता है, उसके उसके मूवीज बन जाते हैं, पीके राइट मूवी बनी थी पीके और ONG ओ माय गॉड, तो ऐसी मूवीज बनाकर लोगों के अंदर जितनी श्रद्धा है वैष्णव के लिए या ब्राह्मणों के लिए उसको खत्म किया, खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो वैसे ही थोड़ा सा श्रद्धा है लेकिन वो भी धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रहा है। तो अगर कोई कभी कुछ प्रॉब्लम होता है किसी किसी के साथ भी वैष्णव जमा के साथ भी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वैष्णव खराब हैं। कोई डॉक्टर अगर एक डॉक्टर खराब है इसका मतलब ये नहीं कि सारे डॉक्टर खराब हैं, मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगा ही नहीं, मैं खुद ही अपना ट्रीटमेंट करूंगा, संभव नहीं है। वैष्णव और वैष्णव अगर नहीं है, वैष्णव संघ नहीं है अगर, तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। वैष्णव संघ साधु संघ के विदाउट साधु संघ कोई आगे बढ़ नहीं सकता, तो ये अनिवार्य है वैष्णव संघ साधु संघ। तो यहाँ पर एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि जो सॉरी पिता महाराज कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण और वैष्णव है उनको अगर संतुष्ट किया जाए तो क्या संभव नहीं है। अगर ब्राह्मणों और वैष्णव को अगर संतुष्ट किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण और वैष्णव के हृदय में कौन है? भगवान कृष्ण है या विष्णु है, भगवान विष्णु है। अगर किसी को हम लोग संतुष्ट करें तो वो क्या करेंगे? अपने हृदय में जो है वो हमें देंगे, उनके पास जो संपत्ति है वो देंगे। और ये ऐसी संपत्ति है देने से खाली नहीं हो जाता है, इसलिए भगवान हम लोग सब जानते हैं कि भगवान को पसंद करना आसान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसको उनको पसंद करना आसान नहीं है, जो सर्वश्रेष्ठ है उनको पसंद करना आसान नहीं है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई अमीर व्यक्ति है बहुत कुछ है उसके पास, मुकेश अंबानी उनका घर ही जो है 4,700 करोड़ का है, 4,00,000 करोड़ का संपत्ति है मुकेश अंबानी। तो उनको कोई अगर प्रसन्न करना चाहता है तो आसान नहीं है, लेकिन एक तरीका है। क्या तरीका है? कि उनके पुत्र को अगर कोई उनके पुत्र की प्रशंसा करे उनके सामने वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कभी कभी हम लोग मिलने जाते हैं एक अमीर लोगों से कुछ डोनेशन वगैरह लेने के लिए, थोड़ा सा अगर उनके जो बच्चा है सामने ही थोड़ा सा अगर प्रेम दिखाए उनके बच्चे को तो बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तुरंत जो है जो वो व्यक्ति जो सामने, क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत ही प्रिय है। उसी तरह से ब्राह्मण और वैष्णव जो है वो भगवान के बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव को अगर कोई पसंद करे अगर तो भगवान कृष्ण में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उस व्यक्ति को ठुकरा दे। श्रीमती राधा रानी अगर किसी का रिकमेंडेशन दे उस भक्त का कि ये अच्छा भक्त है या ये अच्छी भक्त है, या फिर कोई भी वैष्णव कोई दूसरा वैष्णव हमारे लिए अगर प्रार्थना करे तो वो जरूर काम करता है, क्योंकि भगवान सुनते ही हैं। क्यों सुनता है? क्योंकि वो वैष्णव बहुत प्रिय है उसके। तो तो तुम ये श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है, ये जो आइडिया है ये काम करने वाला स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। भागवत पुराण में तीसरे स्कंद में जब चार कुमार जब वैकुंठ जाते हैं तो भगवान स्वयं बाहर आते हैं उनको रिसीव करने के लिए। यहाँ पर चार कुमार आ रहे हैं पृथ्वी महाराज के पास, तो पृथ्वी महाराज भी यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। भगवान भी स्वयं जब वैकुंठ में जब चार कुमार गए थे तो उनका जय विजय के साथ जो संवाद हुआ था, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो भगवान स्वयं बाहर आए, अपने पैरों पर चल कर आए भगवान स्वयं, और आने के बाद फिर भगवान विष्णु चार कुमार से कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, एक्चुअली चार कुमार जो है वो बेस्ट ब्राह्मण है। कैसे? ब्रह्मा जी सबसे पहले ब्राह्मण है और ब्रह्मा जी के वो पहले पुत्र है, शिव जी से भी पहले चार कुमार। तो चार कुमार ब्रह्मा जी से उत्पन्न है, इसके लिए वो द बेस्ट ब्राह्मण है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। हाँ, यानी जो तीन गुणों से ऊपर है और जो ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार जिनको हुआ है उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। वैष्णव के लिए किसे कहते हैं? वैष्णव उन्हें कहते हैं जो भगवान का जो व्यक्ति है, पर्सनल फॉर्म भगवान का जो है, भगवान के जो रूप है उनका साक्षात्कार किया है उन्हें वैष्णव कहते हैं। ये डिफरेंस है थोड़ा ब्राह्मण और वैष्णव में, लेकिन दोनों प्रिय है भगवान। कि ये जो संदर्भ है जहाँ पर चार कुमार है, भगवान विष्णु है और जय विजय दोनों वैष्णव है, तो ऐसा ये संदर्भ है, ऐसा एपिसोड है भागवत पुराण में जहाँ पर ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी है और भगवान भी है, तीनों वहां पर। तो बहुत ही यहाँ सब यहाँ पर बहुत सारा सीखने को है इस संदर्भ में। तो यहाँ पर भगवान विष्णु चार कुमारों से कहते हैं कि आपने जो दंड दिया मेरे जो सेवक है उनको, वो बहुत उचित है। थोड़ा साइड ले रहे हैं भगवान, चार कुमारों का साइड लेकर कह रहे हैं आपने जो कुछ किया उचित किया, उनको आपने श्राप दे दिया उचित किया। तो ये जो दो जय विजय है, ये जो सेवक है, ये मेरे सेवक है, तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ इस उनके गलती के लिए, तो मैं खुद माफी मांगता हूँ। तो भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु को ब्राह्मण इतने प्रिय है, वो ब्राह्मण ऐसा है कि क्या कर रहे हैं भगवान, भगवान बोल रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूँ मेरे सेवक को, सेवकों ने गलती किया है। फिर भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली आप लोगों ने, यानी चार कुमारों ने, आपने मेरा साक्षात्कार किया है, मुझे जान लिया है, अब अगर मेरा खुद का साथ भी आपके खिलाफ हो जाए तो मैं अपने हाथ को काट दूंगा। मेरा साथ अगर ब्राह्मणों के खिलाफ हो जाए या वैष्णवों के खिलाफ हो जाए तो भगवान क्या कह रहे हैं? मैं अपने हाथ को काट दूंगा। फिर भगवान कह रहे हैं कि एक्चुअली मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, इसलिए मेरे जो चरण कमल है वो सबको पवित्र कर सकते हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी जो है मैं आसक्त नहीं हूं लक्ष्मी देवी से, फिर भी लक्ष्मी देवी मेरे से आसक्त है, मेरे साथ हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अपने भक्तों का, ब्राह्मण का और भक्तों का मैं सेवक हूं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि ये जो गंगा है, गंगा नदी है, ये मेरे चरण कमल से बहती है और शिव जी भी इसे धारण करते हैं अपने सर पर। मेरे चरण कमल से गंगा जो है वो नदी बह रही है और इस कारण, इसी के कारण शिव जी भी इसे अपने जटा जो सर पर जो है इसका धारण करते हैं। लेकिन मैं भगवान विष्णु कह रहे, मैं वैष्णव का पद धूलि जो है अपने सर पर धारण कर रहा हूं। और अगर मैं ये धारण कर सकता हूं वैष्णव का पद धूलि, तो इस संसार में ऐसा कौन है जो वैष्णव का अनादर कर सकता है। हम कह रहे हैं कि मैं खुद जो है ये भगवान की नम्रता है। हाँ, भगवान ऐसे शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है भागवत पुराण में भगवान कह रहे हैं चार कुमारों कि मैं खुद वैष्णव का पदवी अगर अपने सर पर ले रहा हूँ तो ऐसा कौन है इस संसार में जो वैष्णव का आदर या ब्राह्मणों का आदर नहीं करेगा। तो यहाँ पर ब्राह्मणों का इम्पोर्टेंस हमें नजर आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी जब गया गए थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तब उन्होंने एक लीला प्रदर्शन किया था जहाँ पर वो ये बताया, महाप्रभु ने कहा कि मुझे हेडेक हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो शिष्य ने कहा कि कैसे, क्या इसका सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक ही सोल्यूशन है, किसी ब्राह्मण का जो है चरण से जो धोकर जो पानी रहेगा, जो उच्चिष्ट रहेगा, उसे ग्रहण करने से ही मेरा हेडेक जो है वो चैतन्य महाप्रभु के। जिससे चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे कि उनके जो अनुयायी है, जो फॉलोवर है, वो भी ब्राह्मणों का ठीक तरह से सत्कार करें। अब हम लोग जानते हैं कि कलयुग में जो है बहुत सारे ब्राह्मण क्वालिफाइड भी नहीं है, जनरली कलयुग में कलौशी संभव। तो जो ब्राह्मण क्वालिफाइड नहीं, ब्रह्म बंधु है, उन्हें हम लोग, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। लेकिन जो एक्चुअल ब्राह्मण का क्या लक्षण होता है, कम से कम क्या लक्षण है कि ऋग्वेद में मंत्र है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। ये एक्चुअल ब्राह्मण का लक्षण है। एक्चुअल ओम क्या है, इस मंत्र का अर्थ है ओम तद विष्णु हो परमम पदम सदा पश्यन्ति, सदा पश्यन्ति यानी हमेशा देखते रहते हैं, कौन सूरयः, सूर्य मतलब ये ब्राह्मण, हमेशा कहाँ किस तरफ देखते हैं, भगवान विष्णु के परमम पदम परम धाम में उनका हमेशा नजर होता है। तो ये है ब्राह्मण, एक्चुअल ब्राह्मण। चैतन्य महाप्रभु के अन्याय यानी जो ये आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन, हम लोग सब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर हैं, हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो सच्चे ब्राह्मण है उनका हमेशा आदर करें और वैष्णव का भी आदर करें। तो एक और चीज तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गुरु है वो क्या है, वो ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी है, ब्राह्मण भी है और वैष्णव भी, दोनों है, ब्राह्मण और वैष्णव दोनों है। इसलिए गुरु स्पेशल पर्सनालिटी है, जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद, जैसे अप्रसाद अंदागति होती है। तो हम लोग रोज गाते हैं मंगल आरती में कि अगर गुरु प्रसन्न हो जाए हमसे तो क्या होगा, तो हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं तो कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। तो बहुत हमारे शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, तो सबको हमें सोचना चाहिए कि हाँ ये मेरे से प्रसन्न हो और उनको उनका स्मरण करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। तो शास्त्र में बहुत सारे केस हैं, एक केस तो जो नॉर्मल गुरु है, वैष्णव गुरु भी नहीं है, शुक्राचार्य, तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य को प्रसन्न किया, शुक्राचार्य आसुरों के गुरु है और वहां पर बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु है। तो ये देखने को मिलता है कि इस संदर्भ में कि बलि महाराज और इंद्र का जब सामना हुआ था, तो वहां पर देखने को मिलता है कि बलि महाराज की शक्ति केवल इसलिए आई क्योंकि वो शुक्राचार्य को प्रसन्न किए। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, भले ही आसुरों के गुरु थे लेकिन ब्राह्मण थे, तो उनको प्रसन्न किया तो क्या हुआ, शुक्राचार्य बहुत शक्तिशाली बन गए। और यहाँ पर इंद्र ने बृहस्पति को का अनादर किया, बृहस्पति जब आए तो इंद्र जो है वो उनको सम्मान करना भूल गए, तो बृहस्पति जो है नाराज हो गए। तो यहाँ पर बृहस्पति नाराज हो गए एक क्षण के लिए, केवल इंद्र ने जो है वो उनका अनादर किया और वहां पर शुक्राचार्य को प्रसन्न कर दिया बलि महाराज ने, इसलिए बलि महाराज जीत गए और इंद्र को, और इंद्र ही नहीं सारे देवताओं को जो है उन्होंने स्वर्ग से भगा कर स्वर्ग कैप्चर कर लिया। इसके कारण हम लोग ये भी देखते हैं कैसे ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी, ये दो केस है, दोनों जो है दोनों की डीलिंग अपने गुरु के साथ अलग अलग डीलिंग थी। तो ईश्वरपुरी थे, उन्होंने बहुत अच्छा सेवा किया इसलिए माधवेंद्रपुरी का, खास करके उनका जो जब अंतिम समय बन रहा था तो उनका बहुत ही सब कुछ ठीक तरह से देखभाल किया, उन्होंने सोचा नहीं कभी कि ये करना उचित है या उचित नहीं है, पूरे एकदम श्रद्धा भाव से और बहुत डेडिकेशन से एकदम उन्होंने श्री माधवेंद्रपुरी का सेवा किया। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए, तो प्रसन्न हुए तो गुरु के सेवा से उनको ईश्वर गुरु को बाद में क्या मिला, भगवान का सेवा मिला डायरेक्ट। ईश्वरपुरी जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा किए तो उनका गुरु बन गया, सेवक किए। तो लेकिन रामचंद्रपुरी जो है वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने अपराध किया, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध। तो एक जगह एक है वैष्णव सेवा जो यहाँ पर टॉपिक है, और उसका जो विपरीत है, ऑपोजिट है, वो क्या है, वैष्णव अपराध। ये दोनों ऐसे हैं, अलग अलग डायरेक्शन है। कोई अगर इंद्र तृप्ति करता है तो वो अपना मुख जो है वो कृष्ण से मोड़ लेता है, और अगर इंद्र तृप्ति कर रहा है अगर तो अपना मुख जो है वो भगवान कृष्ण से मोड़ लेता है, लेकिन कोई वैष्णव अपराध करता है तो कृष्ण जो है मुख मोड़ लेते हैं, कृष्ण जो है वो मुख मोड़ लेते हैं। तो वैष्णव अपराध बहुत ज्यादा डेंजरस है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अपने वैष्णव बनने के लिए, अपनी भक्ति लता को ठीक तरह से रखने के लिए, भक्त बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नाश हो जाएगा अगर हम लोग वैष्णव अपराध करते हैं। तो कोई वैष्णव सेवा में ऊपर जा सकता है और वैष्णव अपराध में भी प्रगति कर सकता है, इसमें प्रगति करना है, वैष्णव सेवा में भी प्रगति कर सकते हैं जैसे कि ईश्वरपुरी, और वैष्णव अपराध में भी प्रगति कर सकते हैं। क्या अर्थ है इसका, प्रगति कौन सा प्रगति है ये, जैसे रामचंद्रपुरी क्या प्रगति किए, पहले वैष्णव अपराध किए, साधारण वैष्णव में फॉल्ट देखते थे, पहले फर्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या था, गुरु अपराध किए, थोड़ा ऊपर गए, ऊपर गए कि नीचे गए, गुरु अपराध किए, और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु में गलतियां देखे। तो वैष्णव अपराध में भी हम ऊपर जाते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा और अपराध करते रहेंगे, वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता वैष्णव सेवा में आगे बढ़ने का रास्ता है। तो एक अंतिम पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज दैट आई डिड नॉट डिविएट एन इंच फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। जाने कहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में मुझे सक्सेस इसलिए मिला है, कामयाबी इसलिए मिली है क्योंकि वो अपने गुरु वाणी सेवा है, दो तरह की सेवा है, एक बपू सेवा जब वैष्णव आए तो उनका स्वागत करना, ये सेवा है बपू सेवा, दूसरा वाणी सेवा भी है। वाणी सेवा यानी जो गुरु का आदेश है, वैष्णव का आदेश है, उसे पालन करना, वो वाणी सेवा है। इसलिए बाबा जी कहते थे कि मैं अपने गुरु के आदेश से एक इंच भी मैं हिला नहीं, यही मेरे कामयाबी का, यही मेरा राज है, सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। तो इसलिए हमें बार बार हम लोगों को याद दिलाना चाहिए कि ब्राह्मण और वैष्णव और गुरु ये भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो हमारे द्वेष के कारण कभी कभी हम लोग वैष्णवों से या अच्छे व्यक्तियों से हम लोग द्वेष कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमसे अपराध ना हो किसी भी वैष्णव के लिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा वैष्णव है कैसा है, और सबको दंडवत प्रणाम करके सबका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। समय होने और वक्त लेने की किसको ब्राह्मण बोलते हैं, किसको वैष्णव बोलते हैं। हाँ एक्चुअली और किसी का पेन ड्राइव गिरा हुआ है वो यहाँ पर आके ले सकते हैं, पेन ड्राइव किसी का है। तो ब्राह्मण माता जी का प्रश्न है, ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर होता है। तो एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि ब्रह्म जाना थी ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण जो होता है नॉर्मली उनको भगवान का जो रूप है, जो भगवान का इतना सुंदर रूप है, वो उसका साक्षात्कार नहीं होता है जनरली। ब्राह्मण यानी वो उस स्तर पर है जो तीन गुणों से ऊपर है, तीन गुणों से ऊपर है, और ब्राह्मण ब्रह्मन ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार है, वहां तक उनका नॉलेज है। भगवान का जो निराकार स्वरूप है, निराकार रूप है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो ब्राह्मण ब्रह्म ज्योति को जानता है, यानी वो जब भगवान के बारे में सोचता है तो वो ब्रह्म ज्योति के बारे में सोचता है, नॉर्मली उतना स्तर है। इसके लिए वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी ऊपर है, क्योंकि वो वैष्णव जो है वो भगवान के भगवान जो व्यक्ति है भगवान उनका पूजा करते हैं। जैसे चार कुमार पहले वो निराकारवादी थे, लेकिन बाद में जब वो भगवान विष्णु को देखे तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो है सेटिस्फाई हो गए हैं, राइट, अब हमारा स्तर जो है वो ऊपर आ गया है। तो ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्योति तक उनका स्तर रहता है, ब्राह्मण को जानते हैं, करेक्ट, पहले ब्राह्मण से फिर वैष्णव होते हैं, ऐसे। हरे कृष्ण।